दिन भर 20 सितंबर दिन बुधवार, मैं हूं रेहान फतल। मेक्सिको में आए भयानक भूकंप में 200 से अधिक लोगों की मौत, पूरे जोरों से राहत कार्य जारी।
We all ran into the middle of the street to avoid having buildings fall on top of us. As I got to the middle of the street,
मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा में शक्ति परीक्षण पर रोक लगाई और देखेंगे क्या वर्तमान भारतीय क्रिकेट टीम अब तक की सबसे अच्छी एक दिवसीय टीम है।
ये ऐसी टीम है जहाँ पे अगर कप्तान दिल्ली पे आउट हो रहा है तब भी दूसरे साथी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसका रीजन ये है कि विराट ने ऐसी टीम खड़ी कर दी है जो अपने आप में हर प्लेयर को अपने आप पे कॉन्फिडेंस है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। मध्य मेक्सिको में कल रात आए भयंकर भूकंप के कारण अब तक 250 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें मेक्सिको सिटी में सबसे ज्यादा 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। रिक्टर स्केल पर 7.1 की तीव्रता वाले भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गई हैं, बिजली और गैस की सप्लाई बाधित हुई है। कई जगह गैस लीक होने की वजह से आग भी लग गई है। एक स्कूल में भूकंप के कारण ध्वस्त हुई इमारत के मलबे में कम से कम 30 बच्चों और कई स्कूली कर्मियों के दबे होने की खबर है। अब तक इस हादसे में 20 बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। भूकंप के बाद राहत कार्य रात भर चला है और 4000 सैनिकों को इसमें लगाया गया है। मेक्सिको सिटी में मौजूद एक पर्यटक डेनियल लिबर्सन ने बीबीसी को बताया,
It's absolutely horrible. There's gas leaks. There's been explosions.
वो नज़ारा बहुत भयानक था जब गैस लीक हुई और धमाके होने लगे। अभी कर्फ्यू लगा है और इसका असर नज़र आ रहा है। पुलिस ने हमें रोका और होटल वापस भेज दिया। पुलिस सिर्फ एम्बुलेंस और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को ही जाने दे रही है। कई जगह लूटपाट की भी खबर है। लोग दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर वहां से चोरी कर रहे हैं। यहां अफरा तफरी मची हुई है। ये थे डेनियल लिबर्सन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। बिहार के भागलपुर जिले में उद्घाटन से कुछ ही घंटों पहले एक नहर परियोजना की दीवार ढह गई है। इस परियोजना को पूरे होने में करीब 40 साल लग गए थे। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहलगांव में बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर परियोजना का उद्घाटन करना था, लेकिन दीवार टूटने के बाद उद्घाटन का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने संबोधन में म्यांमार से लाखों रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस लेने की अपील की है। म्यांमार में 25 अगस्त से भड़की हिंसा के कारण लाखों रोहिंग्या मुस्लिम भागकर बांग्लादेश में शरण ले रहे हैं। कल म्यांमार की नेता आंग सान सू ची ने देश के नाम संबोधन में कहा कि रोहिंग्या शरणार्थियों की वापसी में मदद करना चाहेंगी, लेकिन बांग्लादेश का कहना है कि उन्होंने ये नहीं बताया है कि शरणार्थियों की वापसी की प्रक्रिया क्या होगी। वहीं म्यांमार की सरकार में एक मंत्री डॉक्टर विन म्यत आए ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जो बांग्लादेश भाग गए हैं वो रोहिंग्या चरमपंथियों के समर्थक हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग के प्रमुख ने कहा है कि सुरक्षा परिषद को म्यांमार पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि म्यांमार जिस तरह का बर्ताव रोहिंग्या लोगों के साथ कर रहा है, ऐसे में प्रतिबंधों पर विचार करना चाहिए। जैद राद अल हुसैन ने बीबीसी से कहा कि कड़ाई बरतने की अपील की गई है। हमें प्रस्ताव को देखना होगा जिसमें एक रूपरेखा खींची गई है। इसमें हत्याएं रोकने की बात कही गई है। संयुक्त राष्ट्र इसमें मदद कर सकता है। जो रखाइन प्रांत से निकाले गए हैं उन्हें वापस बुलाना चाहिए, और अगर इनका पालन नहीं किया गया तो सुरक्षा परिषद को कड़े कदम उठाने के बारे में सोचना होगा। ये थे जैद राद अल हुसैन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। कैरेबियन द्वीप में पिछले दो हफ्ते में दूसरा शक्तिशाली चक्रवाती तूफान मारिया कहर बरपा रहा है। प्यूर्टो रिको में तूफान मारिया टकरा चुका है। 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बह रही हैं, और प्यूर्टो रिको की राजधानी के मेयर का कहना है कि इससे बड़े पैमाने पर नुकसान की संभावना है। वहीं बीबीसी संवाददाताओं के मुताबिक हवाएं इतनी तेज हैं कि मलबा भी उड़ता नजर आ रहा है। इससे पहले अमरीका के वर्जिन आइलैंड में भी ये तबाही मचा चुका है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। शुरुआत करते हैं मैक्सिको से। मध्य मैक्सिको में आए भयंकर भूकंप में अब तक 216 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से आधे लोग मैक्सिको नगर में मारे गए हैं। रिचर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई थी, जिसकी वजह से दर्जनों भवन धराशायी हो गए और पूरे इलाके की बिजली चली गई। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे विवरण के साथ सलमान रवि।
सेंट्रल मैक्सिको के लोगों ने बस कुछ ही घंटों पहले शक्तिशाली भूकंप से बचने का अभ्यास किया था। उन्हें पता नहीं था कि जिस भूकंप से बचने का वो अभ्यास कर रहे हैं वो इतनी जल्दी ही आ जाएगा। 7.1 की तीव्रता के भूकंप ने सेंट्रल मैक्सिको में भारी तबाही मचाई, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर है, जबकि बड़े पैमाने पर मकान और इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। आपातकालीन सेवा से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता मलबे में दबे लोगों को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इन्हीं में से एक हैं हेसुस शोरेज, जो सेंट्रल मैक्सिको में ही मौजूद थे जिस वक्त भूकंप आया था।
We all ran into the middle of the street to avoid having buildings fall on top of us. As I got to the middle of the street and looked,
हम सड़कों के बीचों बीच भागे ताकि बड़ी बड़ी इमारतों से बच सकें। सड़क के बीच पहुंचकर जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो इमारतें आगे पीछे हिल रही थी, उनमें से धूल निकल रही थी। इलाके में धूल का गुबार भर गया था। जगह जगह से गैस की महक आ रही थी। एक इमारत की छत पर लपटें दिखी। इमारत में आग नहीं लगी थी बल्कि गैस का पाइप फट गया था और उसमें आग लगी हुई थी।
भूकंप से हुई मौतों में आधी से ज्यादा मौतें मैक्सिको शहर में ही हुई हैं। राष्ट्रपति एनरिक पेना नाइटो ने शहर के उस स्कूल का दौरा किया जहां 20 से ज्यादा छात्रों की मौत हुई, जबकि 30 से ज्यादा बच्चे मलबे में फंसे हुए थे। घटनास्थल पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आपातकालीन सेवा के कर्मी लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हर कदम उठा रहे हैं।
जो लोग मलबे में फंसे हुए हैं और जो लोग घायल हैं, हमारी प्राथमिकता वही है। आपातकालीन सेवा हर किसी के लिए उपलब्ध है जिन्हें उसकी ज़रूरत है। दुर्भाग्यवश कई लोगों की जानें चली गईं इमारतों में, घरों और स्कूलों में। इनमें बच्चे भी थे। मैं उन लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने परिवार वालों को खोया है, अपने करीब के लोगों को खोया है। मैक्सिको आपके दर्द में आपके साथ है।
राष्ट्रपति एनरिक पेना नाइटो का कहना था कि तमाम मैक्सिको वासी इस विपदा में आपस में मिलकर काम कर रहे हैं।
Expreso mi admiración a la unidad, trabajo y generosidad con la que una vez más।
घटना के बाद जिस उदारता और एकता का मैक्सिकन लोगों ने परिचय दिया है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। ये भूकंप एक बड़ा इम्तिहान है, मैक्सिको के लिए एक तकलीफ देह इम्तिहान। पहले भी भूकंप के साथ मैक्सिको के लोगों के बड़े कड़वे अनुभव रहे हैं, इसी वजह से हमने एकजुट होकर ऐसे हालात का सामना करना सीख लिया है।
एलेक्स मैक्सिको के रहने वाले हैं और उनका कहना है कि भूकंप के बाद लोग एक दूसरे की मदद करने में जुट गए थे।
What I like is the fact that people is helping each other. I mean, in a situation like this, you gotta help each other. There is no other choice.
मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी है कि सब आपस में मिलकर एक दूसरे की मदद में लगे हुए हैं। मतलब है कि इस तरह के हालात में ऐसा ही करना चाहिए, दूसरा कोई चारा नहीं है। मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। मुझे भी मलबे से निकाला गया। मैं यहाँ से गुजर रहा था। मुझे लगा कि लोगों को मेरी मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ।
हालांकि सेंट्रल मैक्सिको में मंगलवार को आए शक्तिशाली भूकंप के कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने शिकायतें की कि देश की सिस्मिक अलर्ट सिस्टम यानी भूकंप की चेतावनी देने वाली व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर रही है। जानकार मानते हैं कि भूकंप की स्थिति में जान बचाने के लिए पहले कुछ सेकेंड बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे वक्त में अलार्म सिस्टम के अनुसार घबराहट और तैयारी के लिए जो समय माना गया है वो सामान्य है या नहीं, इस पर काफी कुछ निर्भर करता है।
मैक्सिको में जबरदस्त भूकंप। और अब कुछ खबरें भारत से। तमिलनाडु में चल रही सियासी उठापटक के बीच मद्रास हाईकोर्ट ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण पर रोक लगा दी है। विधानसभा के स्पीकर पी धनपाल के वकील ने अदालत के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगले कुछ दिनों तक सदन में कोई बहुमत परीक्षण नहीं होगा जब तक कि संबंधित पक्षों के जवाब दाखिल न कर दिए जाएं। मद्रास हाईकोर्ट ने फिलहाल मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने 18 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने के स्पीकर के फैसले पर भी कोई रोक नहीं लगाई है, लिहाजा वो अयोग्य बने रहेंगे। इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
देश के प्रमुख वकील अन्नाद्रमुक के विभिन्न गुटों और डीएमके के लिए आज मद्रास हाईकोर्ट में हाजिर हुए और अपनी दलील पेश की। आखिरकार जस्टिस एम दोरेस्वामी ने विधायकों को अयोग्य घोषित करने के मामले पर रोक नहीं लगाई, लेकिन टीटीवी दिनाकरन के वकील राजा सिंथूर पांडियन आज के निर्णय को अलग नजरिए से देखते हैं।
Also is said, even assuming that petition means the order of the speaker is stayed, election commission can take cognizance of treating the constituency as a vacant one. Whereas
court हमारे दरखास्त से आगे गई है और कहा है कि चुनाव आयोग इन 18 क्षेत्रों में उपचुनाव ना करें, यही हमारे लिए एक जीत है। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि जब तक विधायकों को अयोग्य घोषित करने के मामले में निर्णय नहीं दिया जाता, तब तक विधानसभा में शक्ति परीक्षण नहीं करनी चाहिए। ये थे राजा सिंथूर पांडियन के शब्द। कानूनी और राजनीतिक हलाकों में तो बहस जारी है कि आज के निर्णय से किसकी जीत हुई है। कुछ जानकारों का मानना है कि टीटीवी दिनकरन गुट के लिए यह नाकामयाबी का मौका है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक सुमन पी रामन भी मानते हैं कि आज के निर्णय के बाद 18 विधायक अभी भी अयोग्य घोषित ही हैं। सुमन पी रामन ने कहा,
I don't see an immediate resolution in terms of a few weeks time that the entire issue gets resolved. I think this is going to go on for several months at least.
ये तो स्पष्ट है कि कानूनी निर्णय जल्द से जल्द नहीं आने वाला है, तो इस वजह से सरकार को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जब तक वो कानूनी उपाय नहीं आता है, एडप्पडी पलनीस्वामी को ये एक मौका है जो समर्थन लोगों का गंवा लिया है उसको वापस लेने के लिए। अगर वो थोड़ा सा भी हुकूमत पर ध्यान दें तो शायद उनकी राजनीति को अच्छा ही हो सकता है। ये थे सुमंत पी रामन के शब्द। रामन के बात में कुछ मायने हैं। उनका मतलब ये है कि अन्ना द्रमुक पिछले 8 महीनों में नीचे सर्पिल हो गई है। पहले जयललिता की मौत हुई, फिर ओ पन्नीरसेल्वम ने वीके शशिकला का विरोध किया, उसके बाद अन्ना द्रमुक के दो गुट बन गए और चुनाव आयोग ने दो हरे पत्तों वाला चुनाव चिन्ह को वापस ले लिया। उसके बाद से किसी को ये पता नहीं चल रहा है कि सरकार चल रही है या नहीं। तो एडप्पडी पलनीस्वामी क्या करते हैं, उस पर हर किसी की नजर रहेगी ही। इमरान कुरैशी, बीबीसी बेंगलुरु।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आजकल अमरीका गए हुए हैं, जहां वो छात्रों से रूबरू हो रहे हैं। अपने भाषणों और साक्षात्कारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना रहे हैं। वो देश की नीतियों पर सवाल कर रहे हैं और अपनी पार्टी पर उठने वाले सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। क्या उनका ये दौरा भारत में उनकी छवि निर्माण में सहायक साबित होगा? पड़ताल कर रहे हैं अभिमन्यु सिंह, जिनकी रिपोर्ट पेश कर रही हैं हरिता कांडपाल।
अमरीका में विश्वविद्यालयों में राहुल गांधी ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिनकी चर्चा भारत में हो रही है। वहां के छात्रों से रूबरू हो रहे राहुल गांधी ने रोजगार, चीन से भारत की तुलना से लेकर मौजूदा सरकार की विफलताओं के बारे में कई बयान दिए हैं। उन्होंने न्यूजर्सी स्थित प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में आज कहा कि रोजगार भारत की सबसे बड़ी चुनौती है।
If we start the clock now and we stop it same time tomorrow 24 hours from now 30,000 new people just came in.
हर दिन बाजार में 30,000 बेरोजगार युवा आ रहे हैं और 450 लोगों को ही रोजगार मिल रहा है। हम लोगों को उन सभी को रोजगार देना होगा। मेरे ख्याल से मेक इन इंडिया का लक्ष्य छोटे छोटे उद्योगों को लाभ पहुंचाना होना चाहिए था, लेकिन इसके तहत अभी बड़े उद्योगों को टारगेट किया जा रहा है।
ये थे राहुल गांधी। अमरीका की यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी अपने भाषणों और साक्षात्कारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार निशाना बना रहे हैं। वो देश की नीतियों पर सवाल कर रहे हैं। विदेश में राहुल गांधी के बयानों के क्या मायने हैं? वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, इस पर वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा कहते हैं।
राहुल गांधी के खिलाफ बहुत प्रचार हुआ है देश में, प्रोपेगेंडा हुआ है, उनकी एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश की गई है कि वो नासमझ से व्यक्ति हैं और उनके पास जो आज के दिन अवसर उपलब्ध है वो उसको उसका इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। और मैं समझता हूँ उस लिहाज से ये जो उनका दौरा था यूनाइटेड स्टेट्स में, ये एक अच्छी शुरुआत है।
राहुल गांधी यूं तो कई बार विदेश जाने के लिए चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस बार उनका ये दौरा उनके राजनीतिक बयानों को लेकर चर्चा में है। 2014 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद पिछले 3 साल में कांग्रेस के लिए राह मुश्किल रही है और लगातार ये सवाल पूछा जाता रहा है कि राहुल गांधी कांग्रेस की कमान कब संभालेंगे। इस बार पहली बार था जब राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा कि वो अगर पार्टी चाहे तो प्रधानमंत्री पद के लिए तैयार हैं। तो क्या वो 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर चुके हैं? वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह,
वो एक तरह से मोदी की ही नकल कर रहे हैं। मोदी ने अपनी जो छवि बाहर विदेशों में बनाई थी उससे उनका कद काफी ऊंचा हो गया था। राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं उन्होंने उनको कहा है कि आप विदेशों में अगर जाके अपनी बात रखेंगे तो वहाँ की बड़ी अखबारों में छपेगी आपकी बातें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी जमीन पर कई बार कांग्रेस की आलोचना कर चुके हैं और अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। इससे पहले अमेरिका में राहुल गांधी ने वंशवाद को लेकर जो बयान दिया था उसे लेकर भारत में राजनीति गर्मा गई थी। विनोद शर्मा कहते हैं कि राहुल गांधी वंशवाद पर अपने तर्क ठीक से नहीं रख पाए। उन्हें पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के परिवारवाद का भी उदाहरण देना चाहिए था।
राहुल गांधी की विदेश यात्रा की पड़ताल। बिहार में कहलगांव के बटेश्वर स्थान पर गंगा पंप नहर योजना का बांध उद्घाटन होने से 15 घंटे पहले ही टूट गया। इस घटना के लिए वहां के कांग्रेसी विधायक सदानंद सिंह ने इंजीनियरों और ठेकेदारों की घोर लापरवाही को जिम्मेदार करार दिया है। आज सुबह 10 बजे 40 साल से बेसब्री से इंतजार हो रही नहर का विधिवत उद्घाटन होना था। पटना से मनीष शांडिल की रिपोर्ट।
आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भागलपुर जिले के कहलगांव में बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर परियोजना का उद्घाटन करना था, लेकिन उद्घाटन से करीब 17 घंटे पहले ही कल शाम 5 बजे यह नहर कहलगांव के पास टूट गया। 1979 में शुरू हुई इस परियोजना का निर्माण बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इस विभाग के मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह हैं, जो नीतीश कुमार के बहुत करीबी नेताओं में से माने जाते हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सवाल किया है कि मुख्यमंत्री जी इस विभाग के भ्रष्टाचार पर न जाने क्यों चुप रहते हैं। वहीं बिहार के प्रमुख विपक्षी दल राजद के सुप्रीमो लालू यादव ने कहा है कि उद्घाटन तय करने के पहले इसकी अच्छे से जांच कर ली जानी चाहिए थी।
उद्घाटन का कार्यक्रम महीनों से बन रहा था, जब सब बल धन पे सज जाता है, सब देख लिया जाता है, तब तो उद्घाटन कराया जाता है, चीज करके देख लेना चाहिए था। अभी गांव में 5 फीट तक पानी घुस गया, एकदम काफी धराशाही हो गया, लगभग 400 करोड़ रुपया लागत आई है।
1978 में इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 14 करोड़ आंकी गई, जो अब बढ़कर 800 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस परियोजना के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पास बटेश्वर स्थान में गंगा नदी से पानी पंप कर नहर के रास्ते भेजा जाना था। इस नहर से करीब 27,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई का अनुमान है। नहर का करीब 70% हिस्सा बिहार और बाकी का झारखंड में पड़ता है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक नहर में टूट को भरने का काम आज अहले सुबह पूरा कर लिया गया। विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने बताया,
झूठ में ये था कि एक स्ट्रक्चर जो टेक्निकली डिफिशिएंट बना टीपीसी ने बनाया उसको, तो उसको हमारे यहाँ से एनओसी दिया गया कि नहीं दिया गया उसको हम लोग चेक करवा रहे हैं, और एनटीपीसी को भी नहीं चाहिए था टेक्निकली डिफिशिएंट स्ट्रक्चर बनाना, तो हम लोग करेंगे हेडक्वार्टर पहुंच करके बात करके मुख्य महोदय से डिस्कस करके जो कार्रवाई होगी जरूर होगी। जांच हो चुकी है, फैक्ट सब सामने में है।
कल नहर में हुई टूट से श्यामपुर और खुटहरी सहित 4 गांवों, एनटीपीसी टाउनशिप के साथ आम नागरिक इलाके और कहलगांव स्थित कुछ सरकारी आवासों में पानी दाखिल हो गया था। मिली जानकारी के मुताबिक इलाके से पानी लगभग निकल चुका है, लेकिन कुछ रास्तों पर गाद यानी कि पानी के साथ लाई मिट्टी जमा हो गई है। मनीष शांडिल्य, BBC, पटना।
गाजियाबाद में 9वीं कक्षा की एक छात्रा के अपहरण और उसके बाद हुई हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मोदी नगर थाने के सभी 132 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया। बताया जा रहा है कि इस तरह का शायद ये पहला मामला है जबकि किसी अपराध को न सुलझा पाने के लिए पूरे थाने को सजा दी गई है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं समीर आत्मज मिश्र।
गाजियाबाद के मोदी नगर थाना क्षेत्र में बीते दिनों 9वीं कक्षा की एक छात्रा को अगवा कर लिया गया था और उसके 11 दिन बाद उसका शव भोजपुर थाना क्षेत्र के एक खेत में मिला था। घटना के बाद से ही स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा था। पुलिस की कार्रवाई से लोग नाखुश थे, कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, परिजनों ने पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात की और आखिरकार पूरे थाने को लाइन हाजिर कर दिया गया। मेरठ जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार के निर्देश पर SSP ने यह कदम उठाया। प्रशांत कुमार ने BBC को बताया,
वही रहते हैं, इन लोगों को भी बताना चाहिए, केवल थानाध्यक्ष की जिम्मेदारी सकती है।
लाइन हाजिर किए गए पुलिस कर्मियों में 96 सिपाही, 13 महिला सिपाही, 4 SI, 1 ASI और 19 हेड कांस्टेबल शामिल हैं। बताया जा रहा है कि अपने तरह की ये शायद पहली घटना है जबकि थाने के पूरे स्टाफ को किसी एक मामले में ये सजा दी गई हो। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे वरिष्ठ IPS अधिकारी डॉक्टर बजलाल कहते हैं,
नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैंने भी 37.5 साल सर्व किया है लेकिन इस तरह से 132 लोग नहीं होते। इसमें पूरा थाना जिम्मेदार नहीं है, जो वहाँ का थानाध्यक्ष जिम्मेदार हो सकता है, विवेचक जिम्मेदार हो सकता है, उस एरिया के बीच कांस्टेबल जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए पूरा थाना कभी जिम्मेदार नहीं हो सकता। अब उसके आधार पर लगाओ कहीं क्राइम हो जाए थाने में तो कौन सा SP भी जिम्मेदार है? जिम्मेदार तमाम जो है, जिसकी बड़ी घटनाएं होती है तो SP जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक थाने में बड़ा थाना होगा, सबको जो है लाइन हाजिर कर देना, ये मेरे दृष्टिकोण से ये कतई उचित नहीं है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे परिजनों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया था। इसके विरोध में गत सोमवार को मोदी नगर बंद रहा था और लोगों ने प्रदर्शन किया था। लोग पुलिस वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। परिजनों का आरोप है कि अगर पुलिस ने पहले सतर्कता दिखाई होती और अपहरण के बाद ठीक से कार्रवाई की होती तो लड़की को बचाया जा सकता था। यही नहीं, पुलिस ने लड़की के पिता की ओर से नामजद दो लोगों को पहले हिरासत में भी लिया था लेकिन बाद में छोड़ दिया। घटना को शुरू से ही कवर कर रहे स्थानीय पत्रकार अयूब खान बताते हैं कि स्थानीय लोगों और राजनीतिक हस्तक्षेप के दबाव में इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है।
ये थी समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट। राजस्थान में एक स्कूली छात्रा के साथ बलात्कार और फिर गर्भपात के बाद उसकी हालत बिगड़ गई है। उसे जयपुर के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना में एक निजी स्कूल के एक शिक्षक और प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया है। नारायण पारेट की रिपोर्ट।
वो पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी संवारने स्कूल में दाखिल हुई थी लेकिन बलात्कार और गर्भपात के बाद उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस के अनुसार सीकर जिले में एक प्राइवेट स्कूल की छात्रा के साथ शिक्षक ने ही बलात्कार किया, फिर उसका एक निजी अस्पताल में गर्भपात कराया गया। पुलिस कहती है वहाँ उसकी हालत बिगड़ने पर जयपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, यहीं उसके गर्भपात करने की जानकारी मिली। अपनी बेटी के साथ गुजरी ये दास्तान सुनकर अभिभावक दर्द में डूब गए। इस घटना की जांच कर रहे सीकर के पुलिस उपाधीक्षक कुशाल सिंह ने BBC से कहा, इस मामले में शिक्षक और प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
जो नामजद व्यवस्थापक और टीचर जो नामजद थे, हमने काफी प्रयास कर उनको राउंड अप कर लिया, बात कराई से पेश करने के बाद दोनों को हमने ऑन रिकॉर्ड अरेस्ट कर लिया कल और उनको मेडिकल मुआयना कराया, फोरेंसिक और अन्य, और उसके DNA के लिए DNA मिलान के लिए भी हमने उसके कुछ नमूने हॉस्पिटल से लिवाए हैं और बिल्कुल इसमें न्याय संगत और बिल्कुल उचित कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी बच्ची की ध्यान देने की स्थिति में जाएगी, उसके भी ध्यान लगे, फर्दर जो भी आगे कार्रवाई हम कार्रवाई करें। ऐसे सामाजिक
पुलिस गर्भपात कराने वाले डॉक्टर के विरुद्ध भी जांच कर रही है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल पर विरोध प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ की। सीकर के जिला शिक्षा अधिकारी हरदयाल सिंह कहते हैं स्कूल की मान्यता निलंबित कर दी गई है।
स्कूल की मान्यता इसकी निलंबित कर दी गई है, इन बच्चों को दूसरी जगह एडमिशन जहाँ भी चाहेंगे आसपास के स्कूलों में जहाँ वहाँ एडमिशन करवाएंगे। रिकॉर्ड डेट जो दिया है वो तो 399 का दिया है इन्होंने, बाकी इतने हैं नहीं उसमें। स्टाफ रखे जाते हैं, जो भी टीचर रखते हैं उनका वेरिफिकेशन हो पहले, किस तरह का ये करवाएंगे, तो करवाएंगे आगे भी। जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनका निश्चित रूप से हर जहाँ भी चाहेंगे जैसे प्राइवेट में चाहेंगे तो प्राइवेट में तो है फीस वगैरह उनको देनी पड़ेगी, सरकारी में जाते हैं तो कुछ सामान्य से 1 से 8 तक तो कोई फीस है नहीं, सबका एडमिशन हो जाएगा।
शिक्षक संगठनों ने सरकार पर निजी स्कूलों को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया है। शिक्षक संगठन कहते हैं प्राइवेट स्कूलों को सरकारी पनाह हासिल है। विद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष रामकृष्ण अग्रवाल कहते हैं हरियाणा की घटना के बाद भी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया।
एक के बाद एक घटना होने के बाद भी सरकार की आंखें अभी तक खुली नहीं, और पहले हरियाणा में होगी, अब राजस्थान में होगी, सीकर में, तो सरकार को चाहिए उनको कंट्रोल हो, सरकारी स्कूलों को प्रोत्साहन करें न कि निजी स्कूल को, और साथ साथ उसमें मॉनिटरिंग भी हो, समय समय पर उनकी चेकिंग भी हो, बच्चों से भी बात करें, इंस्पेक्टर बात दियो तभी जाकर पता होगा, अभिभावक से भी मीटिंग होनी चाहिए, जैसे सरकारी स्कूलों में अभिभावकों की मीटिंग होती हर महीने में, वहाँ पर भी ऐसी मीटिंग हो जहाँ सरकार का प्रतिनिधित्व वहाँ जावे और उनसे बात करे अभिभावकों से। हम मांग करेंगे सरकार जो सीकर की घटना हुई है इसको एक बार मान्यता रद्द करे, और जब तक सिक्योरिटी सरकार दे नहीं पा रहे तब तक उनकी मान्यता बात नहीं करे।
12वीं जमात की छात्रा के लिए ये वक्त भविष्य के सपनों की सुंदर इमारत खड़ी करने का था, मगर इस हादसे में उसके ख्वाबों का आशियाना बिखर गया। नारायण बारेठ, जयपुर, राजस्थान।
भारतीय क्रिकेट टीम पिछले कुछ दिनों से जिस तरह श्रृंखलाओं पर श्रृंखलाएं जीत रही है, उसके बाद इस पर बहस छिड़ गई है कि कहीं ये टीम भारत की सर्वकालिक महान टीम तो नहीं है। राखी शर्मा की रिपोर्ट।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे भारतीय टीम अब दूसरे वनडे में ईडन गार्डन्स फतह करने की कोशिशों में जुटी है। दोनों टीमों के बीच दूसरा वनडे कल कोलकाता में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने पहला वनडे कठिन परिस्थितियों के बावजूद जीता। टीम 11 रन पर 3 विकेट खोने के बावजूद पारी की समाप्ति तक 7 विकेट के नुकसान पर 281 रन पर पहुंचने में कामयाब रही। इस टीम में दिग्गज एक नई ऊर्जा देख रहे हैं। टीम का बल्लेबाजी क्रम 7वें-8वें नंबर तक जाता है, जो 2019 विश्व कप के लिहाज से काफी अच्छा है। वरिष्ठ खेल पत्रकार विजय लोकपल्ली कहते हैं
ये ऐसी टीम है जहाँ पे अगर कप्तान जल्दी भी आउट हो रहा है तब भी दूसरे साथी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उसका रीजन ये है कि विराट ने ऐसी टीम खड़ी कर दी है जो अपने आप में हर प्लेयर को अपने आप पे कॉन्फिडेंस है। सबसे पहला ये है कि उन्होंने हर प्लेयर को ये आश्वासन दिया है कि आपको अगर आप मान लीजिए 2 मैच में फेल हो गए बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा।
पूर्व कप्तान MS धोनी की बल्लेबाजी भी विराट की कप्तानी में बदली हुई लगती है। अब वो विकेट पर जमने का समय लेते हैं और फिर बड़े शॉट्स लगाते हैं। पहले वनडे में धोनी ने 88 गेंदों में 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 79 रन की पारी खेली। अर्धशतक जमाने तक उन्होंने सिर्फ 1 चौका लगाया, जबकि इसके बाद उन्होंने अंतिम 2-3 ओवरों में बाकी बाउंड्री लगाई। धोनी के इर्द गिर्द के बल्लेबाज भी उनकी भूमिका में सहायक साबित हो रहे हैं, ऐसा भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा मानते हैं।
अच्छाई ये है कि उनके आसपास के जो खिलाड़ी हैं वो भी अब थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग गए हैं। चाहे हम श्रीलंका में भुवनेश्वर कुमार थे, यहाँ पर हमने देखा हार्दिक पांड्या थे, तो जो साथ में खेल रहा है वो भी उनको ये मौका दे रहा है कि चलिए धोनी, आप अगर किसी और तरीके की किसी और ब्रांड की क्रिकेट खेलना चाहते हैं ना तो आपको वो इस समय इजाजत है। तो ये एक देख के और अच्छा लगता है कि एज ए टीम वो टीम भी जो है वो रैली अराउंड कर रही है एक दूसरे के।
कप्तान विराट कोहली की इस टीम में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या हैं, जो आक्रामक और बड़ी पारी खेलने के साथ साथ विकेट निकालने में सक्षम हैं। तो वहीं युवा स्पिन जोड़ी कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल भी हैं, जो अश्विन और रविंद्र जडेजा की कमी नहीं खलने देते। 2019 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए इस टीम का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में क्या कमबैक करने में माहिर विराट की टीम को अब तक की सर्वश्रेष्ठ टीम कहा जा सकता है? विजय लोकपल्ली कहते हैं
नहीं, मैं कहूंगा सबसे बेस्ट टीम तो वही थी जो दादा ने बनाई थी, क्योंकि अगर आपको याद हो सौरव गांगुली को जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी तब दी गई थी जब मैच फिक्सिंग का दौर था, बहुत कठिन दौर था, उस वहां से वो टीम को निकाल के लाए। मैं कहूंगा एक नई छवि दी उन्होंने इंडियन क्रिकेट को बाहर जाके जीतने की, और धोनी ने अपने तरीके से टीम को लीड किया, लेकिन धोनी का एडवांटेज ये था कि उनके पास एक पक्की पकाई टीम थी जहाँ पे मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग था, आपके पास बॉलर अच्छे थे। पर विराट को थोड़ा टाइम लगेगा, वो तो अपना मतलब कोशिश कर रहे हैं कि भारत की एक बेस्ट टीम बने।
विराट कोहली की इस युवा ब्रिगेड में सुधार की गुंजाइश दिखती है, लेकिन फिलहाल के लिए माना जा सकता है कि 2019 विश्व कप के लिहाज से टीम सही राह पर है।
और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। मध्य मेक्सिको में कल रात आए भयंकर भूकंप के कारण अब तक 250 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें मेक्सिको सिटी में सबसे ज्यादा 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बिहार के भागलपुर में उद्घाटन से कुछ घंटों पहले ही एक नहर परियोजना की दीवार टूट गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह दौरा टाल दिया। संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने संबोधन में म्यांमार से लाखों रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस लेने की अपील की। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे शाकिर आलम, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।